ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண சியாவர ராமச்சந்திர கீ மார்மோகட்டவன் கீ. आज दोपहर के समय जबकि मेरी 4 बजे से 5 बजे की टेम थी, उसमें एक भाई को ये पत्र आया था कि भगवान के प्रेम के विषय में कहो, और एक उनको कथन दो कि श्रवण की कथा को तो श्रवण की कथा तो कह दी और प्रेम की बात के लिए अवकाश नहीं मिली, तो वो बात है। और दूसरी बात आप कहते हो कि आपके जो मन मावक हो, तो दो बात, भगवान के प्रेम का जो विषय है और गोपियों के प्रेम का जो विषय है वो तो एक अलौकिक है, वो कोई भी उसको वाणी के द्वारा नहीं कह सकता। उनके प्रेम का जो विषय है वे जानती हैं गोपियां और भगवान जानते हैं, दूसरा कोई जान भी नहीं सकता। कहने की बात तो दूर हुई, भगवान की सारी चेष्टाएं गोपियों को लीला के रूप में दिखा करती थी, और भगवान की प्रत्येक चेष्टा को देख देख करके और गोपियां मुग्ध हो जा करती थी। गोपियों में भी जो राधिका जी है वो सबके ऊपर मालकिनी थी, और उसी के अनुसार एक प्रकार से वह सब चलती थी, उसी के संकेत के अनुसार, हुक्म के अनुसार, और उनका अनुकरण करती थी। गोपियों को जो प्रेम थो वो विशुद्ध प्रेम थो, कोई काम नहीं लेकर के नहीं, कोई आसक्ति नहीं लेकर के नहीं। संसार के वहां जो परस्पर में मनुष्यों का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो तो संजो की आसक्ति है। जैसे माता की पुत्र में आसक्ति है, स्नेह है, इसी प्रकार से की गाय को जैसे बच्चे में अपना स्नेह है या प्रीति है, मैंने लौकिक होने के कारण से आसक्ति कही जाती है। और जो भगवत विषय को जो प्रेम है वो इसे एक बहुत ही विलक्षण है। और फिर गोपियों की तो बात ही क्या है, भगवान सायंकाल के वहां जब सैर के माते थे, वृंदावन में जब प्रवेश करते थे, तो उस समय में गोपियां अपने अपने घरों के ऊपर, डोरी के ऊपर या यूं को दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जा करती थी, और उस भगवान के स्वरूप को देख देख करके मुग्ध होती, मानो उन नेत्रों के द्वारा भगवान को पी जावे। भगवान वन से चल करके आते, शरीर के में पसीना आ जाता, और गांव के खुर से उड़ी हुई धूरी उस में जम जाती, तो भगवान को मुखारविन गो धूली से दूषित हो जाता। पसीने की बूना आई हुई है उसके ऊपर समझो कि महीन महीन गऊ के खोज की धूली उड़ करके उसमें एक जम गई है, रम गई है, तो एक प्रकार से भगवान के मुख की एक शोभा बढ़ जाती। भगवान बड़े चपल नेत्र वाले थे, उन्हें के नेत्रों की चपलता बहुत अधिक थी, वे बार बार जो है सो एक प्रकार से चपल नेत्र से थी, दृष्टिपात करते तो एकदम जिसको देखते उसको मोहित कर देते। भगवान के में बड़ी भारी मोहनी शक्ति थी, जिसके ऊपर समझो की दृष्टि डाली और वो जैसे मोहित हो जाते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भगवान की जो रूप माधुरी है उसको देख करके ऐसा कोने की मोहित नहीं हो जावे। कामदेव जो है वही माने कामदेव ये सम्मोहित हो जाता। भगवान के गुण भी मधुर, चरित्र भी मधुर, भगवान के वस्त्र भी मधुर, आभूषण भी मधुर, और भगवान की जो बंसी है वो भी मधुर, और उस बंसी की ध्वनि भी मधुर, भगवान की वाणी भी मधुर, और भगवान की सुगंध है वो भी मधुर। तो सारी चीज भगवान की मधुर। भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, वार्तालाप है, चिंतन है, ये सब ये सुमधुर। इस वास्ते उसको रूप माधुरी कहते थे। भगवान जिस मार्ग से निकलते थे प्रेम को वितीर्ण करते हुए निकलते थे, उस मार्ग के वन प्रेम के परमाणु इतने रम जाते थे कि दूसरा भी कोई उस मार्ग से निकले तो उसमें प्रेम परिपूर्ण हो जाता था। नारायण 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 श्री नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, बंसी वाले की जय। भगवान को नाम उच्चारण करने के समय में एकदम एकदम मुग्ध हो जाना चाहिए, प्रेम के वहां एकदम मग्न हो जाना चाहिए। बाहर से नाम उच्चारण करने के साथ ही प्रेम की जागृति हो जाती है, प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। नाम उच्चारण के समय में ऐसे भाव करना चाहिए कि हमारे रोम रोम से नाम का उच्चारण हो रहा है, हमारे रग रग से नाम का उच्चारण हो रहा है। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहज ही धुनि होता है सोई सुमनसार। उसकी प्रत्येक जो सिरा है, रग जो है, ये चल रही है, नाड़ी चल रही है, मानो इसे राम राम हो रहा है, रोम फुरक रहे हैं, मानो इसे राम राम हो रहा है। तो इस मानव के भाव से थी, समझो कि रोमांच बारंबार होने लगे तो समझो कि एक साथ के मन करोड़ों लोगों को जप हो रहे, ऐसे भाव करने से चित्त में उत्तरोत्तर प्रसन्नता होती चली जाती है। और नाम के जप के समय के बीच के वहां जब नाम का जब भाव से किया जाता है तो साथ साथ के वहां समझो कि इतना प्रेम होता है कि जिसकी सीमा नहीं रहती, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और गला रुक जाता है और वाणी गदगद हो जाती है और शरीर में रोमांच होने लगते, कभी कभी आंसू पात होने लगते। कानों से यदि कहीं नाम सुनाई दिया या बैठे हैं कहीं बार से ध्वनि आई, बस रोमांच होने लगते हैं। जब भाव होता है हृदय के वहां तो एकदम वो मुग्ध हो जाता है कि भगवान के नाम को सुन करके कि इतना प्रेम होता है। कभी कभी समझो कि आपने बेवस्था हो जाता है, तो ऐसा जो जप है उस जप का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। जब जो है सो श्रद्धा से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, यानी निष्काम भाव से करना चाहिए। उसका तार नहीं टूटना चाहिए। जब मन में प्रेम हो जाता है तो तार टूटता ही नहीं। अपने आप से भगवान का नाम उच्चारण है वो ज्यादा बहनी है, और हम उस नाम का उच्चारण करें वो भी अच्छा है, किंतु अपने आप से निरंतर होने लगे उसके समान और कोई भजन नहीं है। तो ये होता है प्रेम से। तो भगवान में प्रेम बढ़ाना चाहिए। भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। इसी प्रकार से भगवान का जब हम ध्यान करें तो वो ध्यान खूब उच्च कोटि का होना चाहिए। ध्यान करने के समय में भगवान के चरित्र की तरफ ख्याल करना चाहिए। भगवान अवतार लेकर के जो लीला करते हैं उसकी तरफ ख्याल करना चाहिए। लीलाओं की तरफ ख्याल करने के साथ ही भगवान के गुणों का ज्ञान हो जाता है। भगवान के गुण अपने हृदय में प्रकट होने लगते हैं और भगवान के मां गुणों का दिग्दर्शन करते करते भगवान के तत्व को उन्हें समझ जाता है, रहस्य को समझ जाता है। जब भगवान के तत्व रहस्य को समझ जाता है तो उस समय के बीच में वहां बड़ी भारी शांति मिलती है, आनंद मिलता है और समता का भाव हो जाता है। समता, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, ये सब उसका जीवन बदल जाता है। तो भगवान ने कहा कि तो हम लोगों को उससे भी बढ़कर भगवान से प्रेम करना चाहिए। गीता में ये बात बतलाई है। इस गीता शास्त्र का जो मेरे भक्तों में प्रचार करता है, इस गीता शास्त्र का मेरे भक्तों में जो कथन करता है, उसके समान दुनिया में कोई भी मेरा प्यारा काम करने वाला नहीं है और नहीं होगा। मैं तो तस्मा मनुष्य कश्य में प्रिय कृत में भविता न तो मैं तस्मा धन्य प्रिय रूप हुई। इसका अर्थ भाव आपको बतला ही दिया। भाव यही है कि इस गीता शास्त्र का जो मेरे भक्तों में कहता है उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, अन्य भविष्य में होगा। गोपियों को भगवान ने सबसे बढ़कर बताया, किंतु ये नहीं कहा कि इससे बढ़कर कोई भविष्य में होगा भी, वर्तमान में नहीं है। किंतु यहाँ तो भगवान गीता की 18वीं अध्याय के 69 के श्लोक के में प्रतिज्ञा करते हैं कि उससे बढ़कर कोई मेरा प्यारा काम करने वाला भविष्य में होने का भी नहीं। ये मनुष्य का जो शरीर है भगवान के मां प्रेम करने के लिए मिला है, तो भगवान के प्रेम के समान कोई वस्तु नहीं है। ऐसा जो भगवान का प्रेम है उसे भगवान प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होइ मैं जानूं, हरि सजीवों में व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। बालकांड के मां शिवजी कहते हैं कि इस बात को मैं जानता हूं, देवताओं की सभा के वहां शिव जी यह बात कही, इस बात को मैं जान लू। भगवान की भक्ति के प्रभाव से भक्ति को, प्रेम को, और वो ऐसा होना चाहिए अनंत प्रेम, विशुद्ध प्रेम, परम प्रेम, उसमें जो शांति है, आनंद है, ऐसा किसी में भी नहीं है। भगवान चाहे दर्शन नहीं दे किंतु परम प्रेम दे दे, जो परम प्रेम भगवान में हो जाता है तो फिर भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान ने खुद कहा है कि हूँ भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। प्रेम प्राप्त कैसे हो कि प्रेमी जो पुरुष है, भगवत प्रेमी पुरुष, उनके संग से प्रेम मिलता है। तो भगवत संगी संगाना, भगवान के मन जिनका प्रेम है वो भगवत संगी, और उनका जो संग है उनके संग से प्रेम मिलता है, माने सत्संग से प्रेम मिलता है। सत्य जो भगवान, उनमें जिनका प्रेम है वही सत्संगी पुरुष है। भगवान में जिनका प्रेम है, सत वस्तु भगवान है और उसमें जिसका प्रेम है वो भगवान का प्रेमी, उनका जो संग है वो प्रेम का देने वाला है। ऐसे पुरुषों का संग करना चाहिए जिनका भगवान में प्रेम है। तुम जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग, भोगी के संग से भोगी और योगी के संग से योगी, जोगी के संग से जोगी और रोगी के संग से रोगी। तो जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग, तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुष वही है कि जो सत्य जो भगवान है उनमें जिनका प्रेम है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत संग न नहीं कथा के बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद हो हिन दृढ़ अनुराग। जिन सत्संग में हरि कथा ते बिन मोहन भाग, बिना सत्संग के बिना, सत्पुरुषों के संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, कहाँ मिलती है। उस हरि की कथा के बिना मोह जो है अज्ञान, उसका नाश नहीं होता, और बिना अज्ञान के नाश हुए बिना भगवान के में प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम हुए भगवान मिलते नहीं। तो भगवान से यदि मिलना है तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग की और भी बड़ी महिमा गाई है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तुले न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का जो सुख है और मुक्ति का जो सुख है, दोनों को तराजू के एक पलड़े पर रख दो और दूसरी तरफ के वहाँ एक क्षण का सत्संग रख दो, तो उस एक क्षण के सत्संग के समान वह दोनों मिलकर के भी नहीं हुए, तुलसीदास जी कहते हैं। तो बात यह है कि ऐसा जो सत्संग है जिसकी महिमा गाई है वह आजकल के समय में बहुत ही कम है। एक नंबर का सत्संग तो भगवान का संग ही एक नंबर सत्संग है। भगवान के समान कोई सत्पुरुष नहीं है, इस वास्ते ऐसे सत्पुरुष का संग ही सत्संग है। या भगवान के में जो प्रेम है, सत्य जो भगवान, उसमें जो प्रेम है वो भी आपने सत्य में संग सत्संग। और दो नंबर में वो है कि भगवान के जो प्रेमी भक्त है, महात्मा पुरुष है, उन पुरुषों का जो संग है वो दो नंबर का सत्संग है। तीसरे नंबर का सत्संग वह है जो परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते प्रयत्न करने वाले ऐसे जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, उन पुरुषों का संग भी सत्संग है। और चौथे नंबर के बीच के वहाँ ये सब न मिले तो शेष के बीच के वहाँ सत शास्त्रों का संग भी सत्संग। भगवान के मां भक्ति होने से थी, दुर्गुण उसके पास नहीं आ सकते, स्वाभाविक उसके मां सद्गुण आ जाते हैं, इस वास्ते दुर्गुण वहां ठहर नहीं सकते। जैसे सूर्य उदय होने के बाद में अंधकार नहीं रह सकता, जैसे ज्ञान उदय होने पर फिर अज्ञान नहीं रह सकता, इसी प्रकार से भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। ईश्वर में जो भक्ति है और ईश्वर में जो प्रेम है, दोनों एक ही बात है। ईश्वर परानुरक्ति भक्ति, ये लक्षण आपने नारद जी ने किया है कि ईश्वर में जो परम अनुराग है उसी का नाम भक्ति है। असली भक्ति वही है कि जो भगवान के अनुराग माने प्रेम हुए, ईश्वर में जो प्रेम है वही भक्ति है। और भक्ति रूपी मणि जब हृदय में वास करती है तो ये काम क्रोध आदि उसके पास से नहीं आ सकते, और जब तक उसमें काम क्रोध आ रहे हैं तो वो ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं है। राम भक्ति मनि उरे बस जाके, दुख लवले सन स्वपने भूताके, जिसके हृदय में भगवान राम की भक्ति वास करती है, भक्ति मणि जिसके हृदय में वास करती है, उसके पास लेश मात्र भी दुख है, सो स्वप्न में भी ऐसा नहीं आ सकता। जागृत की तो बात ही क्या है, स्वप्न के बीच के मां भी उसके कभी समझो कि लेश मात्र भी दुख चिंता शोक ये नहीं आ सकता। बसही भक्ति मनी जेगी उरे माही, और खलका माजी निकट नहीं जाही, जिसके हृदय के वहां भक्ति मणि वास करती है, राम भक्ति मणि जिसके हृदय में वास करती है, काम को आदि लेकर के जितने खल माने जो दुष्ट है उसके पास ऐसा नहीं ठहर सकते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता राग द्वेष आदि जो बहुत से जो आसुरी संपदा के जो लक्षण जो है, ये जो दुर्गुण जो है उसके पास ही नहीं आ सकते, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति में ही बात करते। इस बात को ध्यान में रख करके सब काम छोड़ करके भगवान की भक्ति के वहां एकदम लग जाना चाहिए, और आपको विश्वास करना चाहिए कि भगवान की भक्ति में, भगवान के मां प्रेम होने पर जो आनंद आता है वो आनंद कहीं भी दुनिया के मन नहीं है। तो ऐसे आनंद को छोड़ करके जो संसार के विषय भोग रूपी धूल को जो चाटता है उसको सब धिक्कार देते हैं, उसे का जो जन्म हो यश है, बल्कि माता पिता का दोष नहीं तो ये कहना चाहिए कि उसे को जन्मने वालों को भी धिक्कार है कि ऐसे को जन्म दे करके पृथ्वी पर बोझ ही बढ़ाया। यदि उसका समझो कि मनुष्य के शरीर में जन्म नियोग कहीं वृक्ष के रूप में होता तो लोग छाया तो बैठते या उससे फल मिलता, और मनुष्य का शरीर पाकर के जो विषय भोगों में अपना समय बिताया है उनकी तो इज्जत कुत्ते के समान है। आहार निद्रा वह मेथुनानी सामान्य चेतानी नारायण पशु नाम
आर निद्रा भय मिथुन ये मनुष्यों में और पशुओं में समान होते हैं, तो शेर पशुओं में और मनुष्य में फर्क ही क्या रहा? तो ये मनुष्य का जो शरीर है संसार के विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, और महामूर्ख है जो मनुष्य के शरीर को पाकर के और भोगों के बीच के में अपनी आयु को बिताता है। भगवान के समान कोई प्रेमी नहीं, उनके समान कोई प्रभावशाली नहीं, उनके भगवान के समान कोई गुणी नहीं। दुनिया के सारे गुणों को इकट्ठा कर लो तो भगवान जो गुणों के सागर है, उस गुणों के सागर की एक बूंद के समान भी नहीं हुए। ये सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में है, जैसे आकाश में एक तारा, जैसे आकाश में हजारों लाखों तारे हैं, ऐसे भगवान के अंदर ऐसे हजारों लाखों से ब्रह्मांड। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 चंद्र की जय, मुकुटवंशी वाले की जय। और आपको प्रेम की बात बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जी की प्रत्येक लीला को देख देख करके जो गोपियां और गोप एकदम मुग्ध हो जाते थे। भगवान की जो चाल है, भगवान की जो बोली है, भगवान के नेत्रों का जो कटाक्ष है, एक एक चीज भगवान की समझुकी मुग्ध करने वाली। उसको याद करने से रोमांच उठते हैं और प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे भगवान उनको छोड़ करके और संसार के विषय भोगों के मन जो रमते हैं, बतलाई कि उनकी जितनी निंदा की जाती थोड़ी, भगवान जैसे पदार्थ को छोड़ करके जो स्वाभाविक उन्हें प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये जीवात्मा उसका अंश है, इसलिए अंश में स्वाभाविक प्रेम होना ही चाहिए। ये उसका एक संजो की अंश है। तुलसी व्यास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव का जो असली स्वरूप है उसकी बात इसमें बतलाई है। कि जीवात्मा है सो ईश्वर का अंश है, तो जैसा अंश ही हो वैसा ही अंश हो। ईश्वर जो परमात्मा है सत्चित आयन घन है, तो इसी प्रकार से उसका अंश भी वैसा ही एक प्रकार से सागर है, ऐसे आनंद के सागर के बीच में अपने आप को